ये उन दिनों की बात है हंसराज और चारू के साथ।
हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ
ये उन दिनों की बात है।
और आज इस एपिसोड में कुछ बहुत ही खास होने वाला है, जैसे हर एपिसोड में होता है।
एग्जैक्टली। और वैसे आपको याद दिला दूं, अगर आप भूल गए तो मैं हूं हंसराज और ये चारू। एंड आज जैसे चारू ने कहा कि बहुत ही कुछ खास है, क्योंकि आज एक ऐसे एक्टर पर, एक लौते डायनामिक एक्टर पर हम फोकस करने वाले हैं। और इस एक्टर की पता है एक दो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बहुत ही अजीब प्रॉब्लम मैंने ऑब्जर्व की है, बहुत सारे लोगों ने शायद की हो। पता है ये एक्टर ना चारू, ये कभी कैमरा से कह सकते हैं आंखों से आंखें मिलाकर देखते नहीं थे।
मतलब साइड की तरफ देख के बात करते थे।
जी हाँ, बिल्कुल। कैमरा से पता नहीं, कैमरा कॉन्शियस थे पता नहीं क्या, लेकिन इनके 80-90% सीन्स कभी भी आप ध्यान से देखे कैमरा में नहीं देखते थे। मार्लन ब्रांडो नाम के एक बहुत मशहूर एक्टर थे हॉलीवुड के, उनको भी ये आदत थी कि वो कभी कैमरा में फोकस नहीं करते थे। अब उसकी वजह ये थी कि वो अपने डायलॉग्स याद नहीं करते थे, और जिसकी वजह से जो कैमरा के बगल में जो प्रॉप्स लेकर, वो फ्लैग कार्ड्स लेकर, डायलॉग्स लिखकर असिस्टेंट्स खड़े होते थे, वो देखकर वो बोला करते थे।
Really? ये तो मुझे नहीं पता था, क्या बात है।
Exactly. Marlon Brando had a problem. लेकिन problem का दूसरा नाम उस दौर में, attitude problem का दूसरा नाम, with due respect, मैं इनके fans को कुछ चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं उनको like, you know, I don't want to demean this legendary actor जो आज भले ही हमारे बीच नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, और इनका नाम है राजकुमार।
इनको हमेशा छाती में खुजली होती रहती थी।
जी 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 जी।
I'm sorry.
ये अनिल कपूर साहब की तरह, आज के दौर में तो नहीं कहूंगा, लेकिन अनिल कपूर साहब की तरह एक दौर में ये एक ऐसे एक्टर थे जो जब शर्ट खोलते थे तो कहते थे, भाई स्वेटर कहाँ से पहन लिया आपने?
Really? ऐसा था?
That was a joke. Anyways, talking about राजकुमार साहब, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उनके इतने सारे किस्से सुने बदतमीजी के, जो वो एक्टर्स के साथ, अपने को एक्टर्स के साथ, अपने डायरेक्टर्स के साथ किया करते थे। मुझे समझ भी नहीं आता ये ऐसे क्यों किया करते थे, मतलब व्हाई?
आई थिंक जैसे होता ना कि कोई अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शक्ल से ऐसा ये एटीट्यूड ड्रिप होता था दैट आई एम द बेस्ट, आई एम लेजेंड।
हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते।
अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू राजकुमार फैंस, मुझे वो कभी भी पसंद नहीं है।
वाह, खुलासा, ब्रेकिंग न्यूज, चारू को राजकुमार साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे। ये क्या हिमाकत, ये क्या बदतमीजी है।
But I loved his attitude, that arrogant attitude.
नहीं, ये तो एकदम लेकिन बचाने की कोशिश की। But nevertheless, seriously, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो हमारे राजकुमार साहब थे जिनको हम इतना चाहते थे, एक ही वॉज अ लेजेंड एक्टर, उनकी आवाज़, उनके बोलने का अंदाज जो भी हो। वैसे इनमें से बहुत सारे जितने लोग इस समय सुन रहे हैं आपको पता ही होगा कि ये कश्मीर से थे और उनका असली नाम था कुलभूषण पंडित।
क्या बात है।
और कुलभूषण पंडित साहब फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले पता क्या करते थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोफेशन में थे।
And what was that?
He was a sub inspector in Bombay Police.
See, that is where the attitude comes from.
My friend's uncle is a police officer. If he's listening to this podcast, then I don't know. तो सबसे पहले बदतमीजी का किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, फिल्म जंजीर। चारू, जंजीर इस फिल्म की कहानी सलीम जावेद साहब ने बड़े बड़े एक्टर्स उस दौर के, देव साहब, धर्मेंद्र, दिलीप कुमार साहब, सबको सुनाई, और सबने अपनी अपनी वजह दी कि मैं फिल्म नहीं कर सकता। राजकुमार साहब को जब ये फिल्म की कहानी नरेशन के लिए, प्रकाश मेहरा साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो जब गए इस फिल्म की ऐसी बेसिक कहानी सुनाने के लिए, पता है उन्होंने ये फिल्म करने से क्यों मना कर दिया? बेसिक मतलब ऐसी अजीब वजह के वजह से उन्होंने मना कर दिया।
हमें तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है।
सॉर्ट ऑफ, बट उन्होंने कहा ये जो तेल तुमने अपने सर पे लगाया है हमें उससे बदबू आ रही है, जाओ हम ये फिल्म नहीं करते।
नो वे, ये सच है।
He did that. Oh my goodness, I can't believe it. लेकिन एक तरह से अच्छा होना, नहीं तो हमको हिंदुस्तान का लंबुस्तान कहाँ मिलता?
हाँ, बिल्कुल सही बात। लेकिन oh my God, I can't believe it that this is what he said कि तुम्हारे सल के तेल की स्मेल मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए रिजेक्ट।
ये तो फिल्म की ट्रेलर है, आगे आगे पूरी फिल्म बाकी है, सुनते रहो क्या होने वाला है। अच्छा, जंजीर से मुझे याद है बच्चन साहब एक अर्ली 80s की बात है, एक पार्टी में राजकुमार साहब से मिले थे और हाय हेलो हुआ, तो राजकुमार साहब ने बच्चन साहब का सूट देखा और कहा, अमित हमें तुम्हारी सूट बहुत अच्छी लगी, तुम जरा हमें उस टेलर का पता देना। तो बच्चन साहब ने कहा, नहीं राज साहब, ये बहुत अच्छा टेलर है, ये वो वगैरह वगैरह, टेलर का नाम दे दिया। तो उन्होंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, वैसे तुम्हारा सूट देखकर हम सोच रहे थे हमें हमारे घर के पर्दे बदलने हैं।
ओ माय गॉड, अमिताभ बच्चन की इतनी बड़ी इंसल्ट।
इंसल्ट कहें या टांग खिंचाई, बट ही वाज डेफिनेटली अ बदतमीज, राजकुमार साहब। अच्छा, मिथुन दा अर्ली 80s में, यू नो, बिफोर डिस्को डांसर, वारदात और सुरक्षा जैसी फिल्में उनकी रिलीज नहीं हुई, तो ही वाजंट मिथुन दा द मिथुन दा। तो फिल्में कर रहे थे, सेकंड लीड में काम कर रहे थे, स्मिता पाटिल उस दौर में जो एक कमर्शियल सिनेमा उन्होंने करना शुरू किया, तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी गलियों का बादशाह, जिसमें इनकी लीड एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। तो सेट पर जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने मिथुन दा को देखा, तो अपने कुछ चार पांच लोगों को कहा, ये कहां कहां से लोग उठ के आते हैं और न शक्ल न सूरत, ये बनेंगे हीरो।
ओह माय गॉड,
मिथुन दा ने एक बार सुना, दो बार सुना, तीसरी बार ही एक्चुअली वेंट अप टू राजकुमार टू कन्फ्रंट हिम, सेइंग दैट सर आप जो भी हो, अपन भी अपन है क्या?
सीरियसली, बट मैं तो कहती हूँ कि ये किस्से सुन के मुझे मन कर रहा है कि यार, लोग जो अगर बॉलीवुड में उठना चाहते होंगे, वो उन्हें जाके एक्चुअली उनको बोलना चाहिए था कि सर आप हमारी इंसल्ट करो, अमिताभ बच्चन की इंसल्ट की सुपरस्टार, मिथुन दा की इंसल्ट की सुपरस्टार।
लेकिन अब हम तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब हम ऊपर हैं। सॉरी। अच्छा, एक और कांड इन्होंने किया राज कपूर साहब के साथ। राज कपूर साहब जब कास्टिंग कर रहे थे मेरा नाम जोकर इस फिल्म की, तो उन्होंने एक सेकंड लीड करो, बिकॉज लीड एक्टर तो डेफिनेटली राज कपूर साहब थे मेरा नाम जोकर में। तो उनको कहा कि सर आप ये रोल करोगे, आगे चलकर वो रोल मनोज कुमार साहब, नहीं सॉरी, धर्मेंद्र ने किया शायद। तो राजकुमार साहब को बड़ा गुस्सा है कि सेकंड लीड वो भी हमें राज कपूर ऑफर कर रहे हैं, नहीं हम नहीं करेंगे। तो टेंशन वैसे ही थी। तो लेट 60s के दौर में, ये मेरा नाम जोकर रिलीज होने से एक डेढ़ साल पहले की बात है, प्रेम चोपड़ा की शादी के रिसेप्शन में दोनों आमने सामने आए, तो राजकुमार साहब ने ताना मारना शुरू कर दिया हमारे राज कपूर साहब को। राज कपूर साहब को आया गुस्सा, उन्होंने कहा मैं जो भी हूँ कम से कम तुम्हारी तरह एक खूनी तो नहीं हूँ।
खूनी?
Exactly. मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि वो बॉम्बे पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे राजकुमार साहब। सो हिज नेम वाज एम्ब्रॉयल्ड इन अ मर्डर कंट्रोवर्सी, मर्डर केस में उनका नाम आया था, जिसके वजह से उनको पुलिस फोर्स छोड़ना पड़ा। उसके बाद लेट 40s के बाद वो बने फिल्म एक्टर।
वाओ, दिस इज सच एन अमेजिंग ट्रिविया, एंड दिस आल्सो टेल्स मी कि राज के ऊपर दूसरे राज भारी पड़ गए।
बिल्कुल। राज भारी पड़ गया, बट यार डेफिनेटली बहुत कहा सुनी हो गई। आगे चलकर चलो, एक दोनों ने एक दूसरे से सुलह कर ली। अच्छा, ये तो तुमको पता ना कि राजकुमार और दिलीप कुमार साहब ने सौदागर इस फिल्म में काम किया था।
करेक्ट।
और सुभाष घई वो एक ऐसे डेयरिंग बाज डायरेक्टर हैं जिनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इन दोनों महादिग्गज जो एक दूसरे को देखते तक नहीं थे, बात भी नहीं करते थे, उन दोनों को साथ में लेकर आना, उनके ईगोस को हैंडल करना, माय गुडनेस। वैसे अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि राजकुमार और दिलीप कुमार साहब ने इससे पहले, सौदागर से पहले कोई फिल्म साथ में नहीं की थी। नहीं, ऐसा नहीं है। 1959 में एक फिल्म आई थी पैगाम, इस फिल्म में दोनों साथ में नजर आए थे, और फिर ठीक 30-32 साल बाद सौदागर ये फिल्म आई थी।
वाओ, तो पहली बात तो दोनों ने हाँ कही, इसका मतलब दे बोथ वांटेड टू एक्ट विद ईच अदर। लेकिन इस फिल्म के दौरान कोई ऐसी बदतमीजी वाला किस्सा नहीं हुआ?
ऐसा कैसे हो सकता है कि राजकुमार साहब और बदतमीजी ना हो? अरे हमारे तो पेट में दर्द होगा। नहीं, एक्चुअली हुआ था, एक सीन था, होली का सीन था, जहाँ पर राजकुमार साहब को रंग फेंकना था दिलीप कुमार साहब पर, और हल्का सा, मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा छिड़कना था रंग बेसिकली। और दिलीप कुमार साहब उस वक्त लेंस पहने हुए थे, तो उन्होंने सुभाष घई को जाकर कहा कि देखो राजकुमार साहब से कह देना कि जरा आहिस्ता मारे, आंख में अगर रंग चला जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी मुझे। राजकुमार साहब जानते थे, उन्होंने पूरा मुट्ठी भर रंग लिया और फचाक के मार दिया दिलीप कुमार साहब के मुंह पर, और पूरा लेंस जो है उनका पूरा खराब हो गया, एंड लिटरली हिज आईज वर बर्निंग, और आग कुचाते कुचाते गुस्से से वो बाहर चले गए, और उसके बाद शूटिंग कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए स्टॉल हो गई।
ओह माय गॉड, देखा इनके साथ भी पंगे लिए, एंड दिलीप कुमार साहब वाज आल्सो अ सुपरस्टार।
नहीं नहीं, दिलीप कुमार साहब तो उससे भी पहले से सुपरस्टार थे।
करेक्ट।
अच्छा, तुम्हें अगर किसी को मना करना हो चारू, कोई सपोज अगर मैं तुम्हें एक फिल्म का ऑफर लेकर आता हूँ, चारू जी प्लीज ये फिल्म कर लीजिए, मुझे लगता है आप परफेक्ट है इस फिल्म के लिए, तुम सोचोगे करूं नहीं करूं, फिर बाद में सोचते हो कि मैं उसे मना कर देती हूं, तो कैसे मना करोगे मुझे?
बोल के कि ये स्टोरी मुझे पसंद नहीं आई, या मैं शायद इसके लिए फिट नहीं हूं, या ये रोल मुझे सूट नहीं करता।
ये कोई क्रिएटिव तरीका हुआ? क्रिएटिव तरीका सीखना है तो राजकुमार साहब से सीखो। रामानंद सागर जिन्होंने रामायण बनाई थी, और उससे पहले वो बहुत सारी फिल्मों के सुपरहिट एक्शन फिल्मों के डायरेक्टर और राइटर रह चुके हैं, तो वो एक फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे जो एक स्पाई थ्रिलर थी, 1969 की आंखें, ठीक है, ये 69 में रिलीज हुई थी, धर्म जी जिस फिल्म में थे। तो धर्म जी का रोल दरअसल करने वाले थे राजकुमार साहब। राजकुमार साहब के घर में गए रामानंद सागर साहब और कहा कि सर ये फिल्म की कहानी एक स्पाई थ्रिलर है। बहुत एक्साइटेड होके वो कहानी सुना रहे थे क्योंकि उनको यकीन था कि राजकुमार साहब को ऐसी टॉपिक्स पर लाइक यू नो बात करना अच्छा लगता है, डिटेक्टिव और क्राइम थ्रिलर्स एंड स्पाई थ्रिलर्स। राजकुमार साहब ने अपने कुत्ते को आवाज दी जो बगल में बैठा हुआ था, उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो अपने कुत्ते के पास गए, उन्होंने कहा सुनो तुमने ये कहानी सुनी, तुम्हें कहानी पसंद आई, तुम ये फिल्म करोगे? अब जाहिर सी बात है कुत्ता बोलता कहाँ से।
Correct.
तो उन्होंने रामानंद सागर साहब को कहा जब हमारा कुत्ता ही तुम्हारी कहानी नहीं पसंद करता, वो ही फिल्म नहीं करना चाहता, तो हम कैसे करें?
Oh my God!
Insult to the core, epic insult.
इसके बावजूद लोग उन्हें फिल्मों में लेते थे और लोग उनके साथ फिल्में बनाते थे।
I don't know because कहीं ना कहीं बहुत सारे, देखो ये मैंने थोड़ा सा इनका बदतमीजी के किस्से जो है मैंने इनके जो मैंने आपको सुनाया, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि राजकुमार साहब जैसा शख्स पूरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। हाँ, उन जैसा बदतमीज भी कोई नहीं था, लेकिन बट ही वाज वेरी नाइस जेन्युइन गाय इट सीम्स।
ओह वाओ, ओके। तो आज हमने ये उन दिनों की बात है, मैं ढेर सारी बातें की लेकिन अभी भी बातें बहुत बाकी हैं और कुछ फिल्मों की और कुछ रियल लाइफ जिंदगी की चलती रही है। लेकिन जाते जाते एक बदतमीजी का किस्सा मैं भी सुना दूं, ये किसी एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट याद हो जहां आपको हंसी आ गई थी किसी की बदतमीजी पे, तो वो ये है। शारजा के एक बहुत ही इलाका है, बल्दिया मार्केट कहते हैं उसे, गवर्नमेंट वाली मार्केट, और वहाँ पे काफी सस्ती सस्ती चीजें मिलती
है। I've been there. It's a fantastic
market. हाँ, 5 दिरहम का यार्ड, 10 दिरहम का यार्ड कपड़ा। तो एक दफा मेरी भाभी आई हुई थी तो हम लोग शॉपिंग करने निकले, तो ये पहली बार वो दुबई आई हुई थी, शारजा आई हुई थी, तो मैं उनको शॉपिंग करा रही थी। तो वहाँ पे बहुत हमारे पठान भाई हैं, तो उनको मैं एक दुकान में गई और मैंने बोला भाई ये कितने का दिया? ये 15 दिरहम का।
ओके
पर यार्ड। तो भाभी ने बोला ले लो ले लो। मैंने कहा नहीं, थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं भाई। तो मैंने कहा भैया थोड़ा अच्छा लगाओ, तो उन्होंने अच्छा ओके लास्ट 12 दिरहम यार्ड। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है काट दो। उसने काटना शुरू किया, जैसे ही काटना शुरू किया तो मेरे मुंह से निकला ये तो 10 में भी मिलता था।
अच्छा
ओके, एकदम से कैंची रखी धाम करके नीचे, और जो पूरा गत्था था कपड़े का वो आप ऐसे धाम करके नीचे रखा। बोला तुम पागल है? और मेरी हंसी छूट गई और मैं अपनी भाभी को देख रही हूँ, मैंने कहा ये क्या आदमी है? तो मेरी भाभी ने गुस्से से बोला क्या है आप ऐसे कैसे बोल रहे, तुम भी पागल है?
वैसा क्या बोलेगा इस सिचुएशन में, औरत लोग बार्गेन कर कर के पागल कर देता है। लेकिन पागल करने से मुझे एक याद आया, एक अंकल थे मेरे दोस्त के, लेकिन रिश्तेदार थे, कभी कभार उनसे मिलना होता था उनके घर में, एक नंबर के नहायती फालतू बदतमीज, हर चीज पर नुक्स उठाने वाले इंसान। तो एक बार ऐसे मेरा बहुत मूड खराब था, ये मैं 12th के वेकेशन की बात कर रहा हूँ, मम्मी डैडी से कुछ झगड़ा होता किसी बात पर, और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उससे बोला और हमारा प्लान था मूवी देखने का। मैं उसको फोन करता हूँ कि भाई चल आजा, मूवी का टाइम हो रहा है, टिकट खरीदने में उसको टाइम लग जाएगा। उसने कहा नहीं यार वो अंकल है ना वो आ गए यार घर पे। तो मैंने कहा छोड़ कैंसिल करते हैं। नहीं नहीं तू भी आ जा यार, मैं अकेला, तेरे को पता अंकल बदतमीज है, मैं बोर होता हूँ यार। तो वैसे मैं तपा हुआ था चारू, मैंने कहा चलो आज चलते हैं अंकल का सामना करते हैं। तो ये उंगलीबाज अंकल जो है ना, इनको हर चीज में नुक्स निकालने की आदत थी। ये जो मेरा दोस्त है उसकी मम्मी खाना बहुत बढ़िया बनाती थी लेकिन उसमें भी वो नुक्स निकालते थे। मेरे दोस्त ने जैसे तैसे करके मुझे बिठाया लंच टेबल पर बिठाया, सब बैठे थे, कुछ और भी 4-5 रिश्तेदार थे उसके। एंड आई हेट दीज गैदरिंग्स, मैं बहुत बोर होता हूँ, लेकिन उसे वैसे ही मेरा मूड खराब था और उसे दोस्त ने बोला 10 बार चल आ जाए, तो इसलिए मैं चला गया। ठीक है, खाना टेबल पर सजा चारू, हर चीज में अरे इसमें इतना तेल है, अरे इसमें इतना मिर्ची है, अरे इसमें इतना वो है, अरे इसमें, मेरा पारा चढ़े जा रहा है। मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़ कर बैठा हुआ, ना अंशु नहीं, क्योंकि मेरी बदतमीजी और मेरा जो गुस्सा था वो एक जमाने में काफी मशहूर था, अब ऑलमोस्ट कम हो चुका है। तो फिर बाद में लाइक यू नो वहां पर उसके एक पेट डॉग भी है। ठीक है, तो हम सब खाना खा रहे हैं, ये मुंह बना के खाना खा रहे हैं। हाँ, हमारे यार जो घर पे जो खाना बनता वो अलग ही है, आजकल तो किसी को खाना बनाना ही नहीं आता, ये आता। तो उन्होंने उसके पेट डॉग की तरफ देखा, मेरे दोस्त के कुत्ते की तरफ देखा, और वो पूछने लगे ये कुत्ता मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहा है? तो पता है मेरे क्या कहा? आप उसकी थाली में खाओगे तो उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या?
अब मुझे पता लग गया, प्रॉब्लम राजकुमार साहब में नहीं है, ये राज नाम में
है। ओके, दैट वाज अ गुड कनेक्शन, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मैं बहुत सुधर चुका, अभी तो बिल्कुल भी मुझे गुस्सा नहीं आता।
ओके, इससे पहले कि यहाँ पे कुछ हो जाए और ये जो छोटा सा हमारा स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ये कहीं कट फट जाए, इट्स टाइम टू से बाय बाय। लेकिन आज हमने राजकुमार साहब की मेनली बातें की, और वो भी उनके बदतमीजी के किस्सों की,
और अगली बार हम बात करेंगे अभी फिलहाल हमने डिसाइड नहीं किया, उसके बारे में आपको जल्दी पता चलेगा जब नया एपिसोड हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड दैट इज गोना बी इन ये उन दिनों की बात है। बाय
बाय।
ये उन दिनों की बात है हंसराज और चारू के साथ।